ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आगामी मार्गशीर्ष 16 गते होने वाले स्थानीय तह के उपनिर्वाचन पर केंद्रित होने का नेकपा एमाले सचिवालय बैठक ने पार्टी के निकायों को किया निर्देश। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा, अवसर से वंचित और पिछड़ी हुई जनता की आवाज को केन्द्र में रखकर सरकार को करने होंगे काम। हवाई भाड़ा नियंत्रण के लिए नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और सरकार वालों के बीच हुई 5 सूत्रीय सहमति। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के एक रेलवे स्टेशन पर हुए बम हमले में 25 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले की सचिवालय बैठक ने आसन्न स्थानीय तह के उपनिर्वाचन पर केंद्रित होने का पार्टी के सभी निकायों को निर्देश किया है। आज एमाले पार्टी मुख्यालय चासल में हुई सचिवालय बैठक ने पार्टी की प्रदेश कमेटियों से सिफारिश हुए उम्मीदवारों के नाम अनुमोदित कर पूरे सामर्थ्य के साथ निर्वाचन में परिचालित होने का पार्टी पंक्ति को निर्देश किया। ये जानकारी एमाले ने दी है। स्थानीय तह के विभिन्न 44 स्थानों में आगामी मार्गशीर्ष 16 गते को उपनिर्वाचन हो रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आसन्न चीन दौरे की तैयारी के संदर्भ में भी विचार विमर्श हुआ था। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन प्रणाली की नींव पर ही देश का सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक विकास करने में सरकार और राजनीतिक दलों को चूकना नहीं चाहिए। आज काठमांडू में गणेश मान सिंह एवं जन आंदोलन शहीद स्मृति शांति प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित गणेश मान सिंह की 110वीं जन्म जयंती तथा अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोडेल ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि देश में मौजूद भ्रष्टाचार विकृति और असंगति को हटाना बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा कि अवसर से वंचित गरीब और पिछड़ी हुई जनता की आवाज और असंतुष्टि को सुनकर व उन्हें केन्द्र में रखकर नीति तथा कार्यक्रम तय करके लागू किया जाना चाहिए। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि नेपाल के शहरीकरण में भुगतनी पड़ रही समस्याओं के समाधान के लिए विश्व समुदाय को ध्यानाकृष्ट करने में इजिप्ट द्वारा सफल हुआ है। इजिप्ट के कायरो में संपन्न वर्ल्ड अर्बन फोरम में सहभागी होकर आज स्वदेश लौटने के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर संचार कर्मियों के साथ बातचीत में उप प्रधानमंत्री सिंह ने भ्रमण को उपलब्धि मूलक बताया। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि भाषा लुप्त होने पर संस्कृति भी लुप्त हो जाती है, इसलिए भाषा संस्कृति के संरक्षण में जुटने की जरूरत है। आज तमो विद्यार्थी छोंज धींग के आज से दमोली में शुरू हुए 12वें महाधिवेशन का उद्घाटन करते हुए संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि अपने बच्चों से बातचीत के दौरान माता पिता को अपनी मातृभाषा में ही बोलना चाहिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पोडेल ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा को व्यवस्थित करने में सरकार जुटी हुई है। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंबर 17 सीता को पायला स्थित पोखरा वृद्धाश्रम में स्थापित पोखरा जेरियाट्रिक स्वास्थ्य कक्ष का आज उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री पोडेल ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के लिए स्रोत सुनिश्चित करके इसे व्यवस्थित और सहज करने की योजना सरकार की है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सब को यो विश्वास होनी नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति व्यवस्था के लिए मेची महाकाली अभियान चलाने की बात कही है। आज मकवानपुर की थाहा नगरपालिका में आयोजित YCL के दूसरे नगर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति व्यवस्था से 5 साल तक स्थिर संचालित सरकार हो तो अस्थिरता नहीं आएगी, उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के शुरूआती दिनों से ही उनकी पार्टी ये मुद्दा उठाती आ रही है। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ शेखर कोइराला ने कांग्रेस के साथ सात सूत्रीय सहमति की नींव पर गठित सरकार द्वारा संविधान संशोधन लगायत की दिशा में कदम न बढ़ाए होने को लेकर चिंता जताई है। नेपाली कांग्रेस त्रियुगा द्वारा आज उदयपुर में आयोजित बीपी कोइराला की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में नेता डॉ कोइराला ने यह बात कही। उन्होंने सरकार से तत्काल ही सात सूत्रीय सहमति को क्रियान्वित करने की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि संविधान संशोधन के लिए सरकार को अन्य दलों के साथ सहकार्य भी करना चाहिए। निर्धारित नियम के तहत ही हवाई सेवा का किराया बरकरार रखने और हवाई टिकट की उपलब्धता को सहज और सुलभ करने की बात पर सरकार वाले निकाय सहमत हुए हैं। हवाई भाड़ा नियंत्रण के लिए नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और संबंधित सरकार वालों के बीच आज हुए विचार विमर्श के बाद इसे क्रियान्वित करने के लिए पांच सूत्रीय सहमति हुई है। बता दें कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल दैनिक 10 घंटा बंद होने के साथ ही हवाई भाड़ा महंगी होने की शिकायतें आने के बाद आज प्राधिकरण अंतर मंत्रालय प्रतिनिधियों और स्वदेशी एवं विदेशी हवाई कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ने हवाई टिकट की उपलब्धता को सहज और सुलभ करने के संबंध में सहमति की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। यह धमाका तब हुआ जब बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में लोग सुबह ट्रेन की इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर आ रहे धमाके की वीडियो फुटेज में अफरा तफरी का नजारा दिखाई दे रहा है, जिसमें मलबे के बीच शव पड़े हुए हैं और स्टेशन की छत का कुछ हिस्सा नीचे लटका हुआ है। पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उन्होंने सेना की एक इकाई को निशाना बनाकर धमाका किया था। पत्रकारों से बात करते हुए क्वेटा के कमिश्नर हमजा शफाकत ने कहा कि आतंकियों को हराना होगा। उन्होंने ये भी कहा, आतंकवादी हताश होकर सॉफ्ट टारगेट पर हमला करते हैं, जब उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो वो जवाबी कार्रवाई में हमले करते हैं। हमास संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक रात भर हुए इसराइली हवाई हमलों में कम 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। हमास के प्रवक्ता का कहना है कि दक्षिणी शहर खान यूनिस में विस्थापित फलस्तीनियों के टेंटों पर हुए हमलों में 9 लोगों की मौत हो गई है। फलस्तीनी रेड क्रेसेंट ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है। एक अन्य हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये लोग पूर्वी गजा के शहर में एक पुराने स्कूल में शरण लिए हुए थे। इसराइली सेना ने कहा कि उसने उत्तरी गजा के जवालिया क्षेत्र में दर्जनों आतंकवादियों के साथ साथ दक्षिणी रफाह क्षेत्र के कई चरमपंथियों को मारा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी मार्गशीर्ष 16 गते होने वाले स्थानीय तह के उपनिर्वाचन पर केंद्रित होने का नेकपा एमाले सचिवालय बैठक ने पार्टी के निकायों को किया निर्देश। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा, अवसर से वंचित और पिछड़ी हुई जनता की आवाज को केंद्र में रखकर सरकार को करने होंगे काम। हवाई भाड़ा नियंत्रण के लिए नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और सरकार वालों के बीच हुई 5 सूत्रीय सहमति और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के एक रेलवे स्टेशन पर हुए बम हमले में 25 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।